बहुत बहुत शुक्रिया खानदी साहब, आपने हमें वक्त दिया। आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है?
जी आपकी दुआएं हैं, अल्लाह का शुक्र है।
खानदी साहब, वैसे तो आप पहले भी अमेरिका आते जाते रहे, आपने काफी इवेंट्स किए। अभी रिसेंटली, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आप कितने अरसे से यहाँ पे?
मैं पिछले साल 1 जुलाई को यहां मुंतकिल हुआ था।
अच्छा, और जैसे अब अभी बात कर रहे हैं तो अमेरिका में इलेक्शन का सीजन है। मैं वैसे आपसे क्यूरियस जानना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ के पॉलिटिक्स को भी फॉलो कर रहे हैं, आपका क्या ओवरऑल रिएक्शन है इस पे, ओपिनियन है?
मैं खास सियासी मामलात में तो कोई राय देना पसंद नहीं करता, बस उसूली बात की जा सकती है और वो यही है कि अमेरिका की एक तारीख है, उसका एक दस्तूर है, उसकी रवायात हैं। मेरा एहसास है कि उनको नुकसान पहुंचा है इस पिछले सारे अरसे में, और अगर सियासी अमल उस नुकसान का इजाला करने में कामयाब हो जाता है तो ये बड़ी गैर मामूली बात होगी। अगरचे अमेरिका का मजमूई निज़ाम इतना मुहकम है कि ऊपर आने वाली तब्दीली कम असरानंदाज होती है, ताहम वो हुई है और हो सकता है कि आइंदा ज़मानों में भी ऐसे तगयुरात आएँ। सियासत इन्हीं नशेब व फराज का नाम है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि एक ही तरह के हालात रहें, लेकिन जो बुनियादी अकदार हैं या जो इंसान ने सियासी मामलात में तरक्की की है उसको पीछे नहीं होना चाहिए। ये हर आदमी जानता है कि अमरीकी दस्तूर की बुनियाद जॉन लॉक के फितरत के तसव्वुरात हैं। ये बड़ी गैर मामूली चीज़ थी जिसको बुनियाद बनाकर यहाँ इंसानी हुकूक, इंसानी आज़ादियों और इस तरह के दूसरे मसाइल के बारे में एक जाविया नज़र पैदा किया गया। उसमें किसी चीज़ से मैं या आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन बैसियत मजमूई वो बड़ी गैर मामूली चीज़ थी, और इसमें कोई शुबा नहीं कि अमरीका ही वो मुल्क है जिसको दौरे हाजिर की हकीकी कौमी रियासत या नेशन स्टेट कहा जा सकता था, जिसमें तमाम लोगों के हुकूक बराबर थे, उसकी ये हैसियत किसी हाल में मजरूह नहीं होनी चाहिए।
तो गालबन अमेरिका वैसा नहीं है जैसा पाकिस्तान में जलसे जुलूसों में रैलियों में बताया जाता है?
नहीं, मेरे नज़दीक ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ चीज़ें बड़े मुख्तलिफ जावियों से देखी जाती हैं, उसमें किसी चीज़ के अंदर उतर कर उसका मुताला करने, उसके गस्सो समीन को अलग अलग करने का तरीका नहीं होता। हम बहुत सी बातें जज्बाती नारों की सूरत में करते हैं और इसी के आदि हैं। यहाँ की मुआशरत क्या है, यहाँ की तहजीबी रवायात क्या हैं, यहाँ के देहात की क्या सूरत हाल है, इस पर कोई बड़ी सैर हासिल गुफ्तगुएँ हमारे उस सियासी पस मंज़र में नहीं होती, बल्कि अमरीका को एक लिहाज से दुश्मन की हैसियत से देखा जाता है और सियासी लीडर बिलमूम इसी एतबार से तबसरे भी करते हैं। अमरीकी माशरत, अमरीकी तहजीब, अमरीकी रवायात, अमरीका में जो सियासी नज़म का इरतका है वो बहुत मुताला करने की चीज़ है। इसका ये मतलब नहीं कि हर चीज़ से इत्तेफाक किया जाता है, इत्तेफाक इख्तलाफ एक अलग चीज़ है। ताहम किसी पर तबसरा करना हो तो उसको उसके अंदर उतर कर समझना चाहिए।
पाकिस्तान में या बाकी मुल्कों में भी जहां सेक्टेरियनिज्म बहुत है, जहां छोटी छोटी बातों पर मजहब के नाम पे या नस्लों मतलब एथनिसिटी पे या बाकी मामलात को एक्सप्लॉइट करके कुछ लोग उसका फायदा उठाते हैं, जहां लोगों के जज्बात इन्वॉल्व होते हैं, तो यू थिंक के लोगों को ये समझना चाहिए कि जब भी कोई फैसला करें खासकर पॉलिसी मेकिंग का, तो उसमें जज्बात को अलहदा के चीजों को देखें, या आप जज्बात को साथ रखना अच्छी बात है? आपके नज़रिए क्या कहता है इस पर?
फैसले तो हर हाल में अकली बुनियादों पर करने चाहिए। इल्म व अकल के मुसल्लमात ही इंसान के रहनुमा बनने चाहिए। फैसले जज्बात से नहीं किए जाते। जज्बात का अपना एक दायरा है, वो हमारी माशरती ज़िंदगी में किरदार अदा करते हैं। बाज़ अहदाफ को हासिल करने में हमें बड़ी कुव्वत फराहम करते हैं, नाजुक सूरत हाल ऐसे पैदा हो जाते हैं जिसमें जज्बात ही इंसान को पाबरजा रखते हैं। तो जज्बात का अपना एक मकाम है इंसानी ज़िंदगी में, उसकी नफ़ी नहीं की जा सकती। काम जब आपको फैसला करना हो तो फैसले में आपके सामने इल्म और अकल के मुसल्लमात होने चाहिए, यानी वो चीज़ें होनी चाहिए जो इंसान ने लंबी जद्दोजहद के बाद सीखी हैं, जो उसके तजुर्बात में आई है, या अगर आप किसी दीन के मानने वाले हैं तो पैगंबरों ने उसकी रहनुमाई की है। इन चीज़ों को सामने रख कर अपने फैसले करने चाहिए, और ज़ाहिर है कि ये इल्मी होंगे, अकली होंगे, इसमें तदबीर है तो तब भी इन्हीं चीज़ों का लिहाज रखा जाएगा, किसी चीज़ का फहम है तो उसमें भी यही होगा। अलबत्ता जिस वक्त आप फैसला कर लेते हैं तो अपनी नौइयत के लिहाज से बाज़ फैसले ये चाहते हैं कि उसमें जज्बात भी आपका मुहर्रिक बने, वो अमल के लिए मुहर्रिक बनते हैं, माशरती ज़िंदगी में भी बनते हैं, सियासी ज़िंदगी में भी बनते हैं।
अच्छा, अभी रिसेंटली भी गांधी साहब जज्बात से रिलेटेड या सेक्टेरियनिज्म की बात कर रहा था, पाकिस्तान में न्यूज़ में भी हम पढ़ते हैं कि सेक्टेरियनिज्म का मामला खासकर मजहब को लेके काफी वक्तन फोक्तन आता रहता है। आपने पाकिस्तानी माशरे को देखा भी है और मजहबी नजरिए से देखा है काफी सालों से, आपकी एक बड़ी लंबी स्टोरी है। टेक्निकली स्पीकिंग, अगर इसका कोई सोल्यूशन है, कोई कोई अमन आ जाए किसी भी माशरे में, और खासकर मैं पाकिस्तान की बात करूंगा क्योंकि आपका मेरा ताल्लुक वहां से, कोई है सोल्यूशन, कोई ऐसा सिंपल कि कोई ऐसा कोई सोल्यूशन लिया जाए जिसमें ये सेक्टेरियनिज्म या बाकी जो छोटी मोटी चीजों पे लड़ाइयां होती रहती है, इवन सियासी उस पर, लेकिन मैं मजहबी हवाले से बात करूंगा क्योंकि आपका उसमें वो है, कोई है ऐसा सिंपल सोल्यूशन उसको हल करने का?
यकीनन है, लेकिन आपने उस पर शर्त आयद कर दी कि वो सादा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए।
अच्छा, सिंपल नहीं है।
ये शायद मुमकिन ना हो, लेकिन मेरे नज़दीक तीन ऐसी चीज़ें हैं, अगर कभी ऐसी क़यादत पैदा हो गई कि जो अज़म के साथ फ़ैसले कर सके, जिसमें पॉलिटिकल विल हो, और वो उन तीनों चीज़ों को एक तदरीज के साथ हासिल करने में कामयाब हो गई, तो ये मामला बिल्कुल दुरुस्त किए जा सकते हैं। एक ये कि निज़ाम तालीम की तफरीक ख़त्म करने में हम कामयाब हो जाए। निज़ाम तालीम यूनिवर्सिटी लेवल पर तो मतनवई होना चाहिए और उसमें हर तरह की चीज़ें ज़ेर बहस आनी चाहिए, लेकिन जो आपका इब्तदा का निज़ाम तालीम है, पहले 12 साल की तालीम, उसमें यकसानियत की ज़रूरत होती है। हमारे मुल्क में ये निज़ाम तालीम ऐसी सूरतों में बांट दिया गया है जिससे एक कौम नहीं बनती बल्कि कौमें वजूद में आती हैं। मजहबी निज़ाम तालीम बिल्कुल अलग है, अंग्रेज़ी मीडियम निज़ाम तालीम बिल्कुल अलग है, उर्दू मीडियम या मकामी ज़बानों में तालीम का निज़ाम बिल्कुल अलग है। तो ये मेरे नज़दीक बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है, इससे तफरीक की तफरीके की बुनियाद पड़ जाती है। दूसरी बड़ी बुनियादी चीज़ ये है कि मस्जिद का नज़्म हमारे माशरे में उलमा के पास चला गया है। इस्लामी रवायत में ये कभी उलमा के पास नहीं होता, ये हमेशा माशरे और रियासत के पास होता है। तो मस्जिद एक बड़ा गैर मामूली इदारा है, वो अगर आप उलमा के सपुर्द कर देंगे तो फ़िरका बंदी की बुनियादें इंतहाई गहरी हो जाएंगी और हर मस्जिद उसका मोर्चा बन जाएगी। और तीसरी चीज़ ये है कि जो हमारे यहाँ के दानश्वर हैं वो तनकीदी मिजाज को और तनकीद करने और तनकीद सुनने को हौसला अफजाई का मौजू बनाएं, यानी इस पर कोई कंप्रोमाइज़ सोसाइटी करने के लिए तैयार ना हो। अगर कोई शख्स किसी बड़े से बड़े मुसल्लमा उसूल पर भी तनकीद करता है तो उसको पूरा मौका मयस्सर हो, उसकी जान माल की हिफाजत हो, सोसाइटी उसके साथ खड़ी हो, इससे कतः नज़र के वो तनकीद दुरुस्त है या गलत, उसको मौका मिले कि वो अपनी बात कहे। अलबत्ता अगर कोई शख्स दुश्नाम का तरीका इख्तियार करता है, गाली देता है या तहजीब से हटी हुई बात करता है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन तनकीदी मिजाज ये किसी माशरे की तरक्की के लिए और वहाँ अमन के लिए ज़रूरी है। जब तक हम तनकीद सुनने और तनकीद करने का रुझान बल्कि ज़ौक नहीं पैदा करेंगे, उस वक्त तक हम ना आगे बढ़ सकते हैं, ना तफरका बाजियों से निजात हासिल कर सकते हैं, ना अपने तासुबात से ऊपर उठ सकते हैं।
अच्छा, डायलॉग से ही रिलेटेड मैं एक बहुत ज़रूरी बात आपसे पूछना चाहूँगा, और आप उसको भी फील करते हैं जहाँ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन और बर्दाश्त पैदा करना या तनकीद का माहौल पैदा करना, आजकल का जो दौर है जिसमें आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेजोरिटी लोग जो हैं इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के जरिए इंटरनेट के जरिए अपने सेल फोन्स पे हासिल करते हैं। इंफॉर्मेशन इतनी डिसेंट्रलाइज्ड हो चुकी है। आपने पहले बताया कि जो जो मसले पैदा हुए पाकिस्तान में उसमें मस्जिद के जो इख्तियारात हैं वो मुख्तलिफ मजाहब या लीडर्स की तरफ चले गए, उन्होंने उसका मिस यूज किया है अगर मैं आप सही समझाऊं। तो ये सोशल मीडिया क्या इस पूरे मामले में मदद कर रहा है या उल्टा मामले को बिगाड़ रहा है? आपकी नजर में क्या किस तरह ये सीन हो रहा है सारा?
मेरे नज़दीक अगरचे बिगाड़ नज़र आता है, लेकिन नतीजे के लिहाज से इससे बेहतरी पैदा हुई है, बेहतरी पैदा होगी। इन्फॉर्मेशन जितनी आम की जाती है, लोगों की रसाई जितनी मुमकिन बनाई जाती है, उससे लोग एजुकेट होते हैं। इस वक्त तो अभी इसकी उम्र कितनी है, यानी 5, 10, 8 साल होगी, 10 साल होगी,
इसी में ही
इतनी
ऑलरेडी
थोड़ी
बहुत थक
उम्र
चुके हैं
में।
हम भी सब लोग।
तो इसमें इतनी थोड़ी उम्र में भी जितने असरात इसके हो गए हैं, वो बड़े गैर मामूली हैं।
जी
मेरे पास वक्त हो तो मैं आपको बताऊं कि इसके मुस्बत असरात कितने हुए हैं। हमारा एक और कौमी मिजाज भी है, और वो ये कि हम मनफी चीज़ों को बहुत नुमायाँ करते हैं। किसी चीज़ के नुकसानात अगर हो रहे हैं, वो हर चीज़ के होते हैं। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया में कोई काम किया जाए तो उसके कुछ नुकसानात ना हो। मैं जमहूरियत के साथ बड़ी मोहब्बत रखता हूँ, मैं उसके नुकसानात भी गिनवा सकता हूँ। तो इसलिए नुकसानात हर चीज़ में कुछ होते हैं। देखा जाता है कि बैसियत मजमू उसके फ़ायद क्या हैं, तो बैसियत मजमू इसके फ़ायद हुए हैं। इसने बहुत से लोगों को उनके मुकाम बुलंद से नीचे देखने के लिए आमादा किया है। और लोग क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, बहुत सी चीज़ें इसके नतीजे में लोगों पर वाज़े होना शुरू हुई हैं। मैं इसको अपनी ज़ात में एक मुस्बत सरगर्मी समझता हूँ। मेरे नज़दीक इलम का शू, इन्फॉर्मेशन का, इत्तलात का शू, ये हमेशा मुस्बत असरात पैदा करता है।
अच्छा गामजी साहब, एक आखिरी बात, आई नो हमारे पास वक्त भी कम है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बात करना चाहता हूँ। रिसेंटली पाकिस्तान में, और दिस इज रिगार्डिंग जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है पाकिस्तान का और पूरी दुनिया का भी, अभी एक रिसेंटली केस हुआ था ज्यादती का लाहौर मोटरवे पे। और जब भी ऐसा अनफॉर्चुनेट वाकया होता है पाकिस्तान में तो एक ऑब्वियसली नेचुरली पब्लिक का रिएक्शन आता है, और उस अगेन वही जज्बात लोगों के होते हैं। अमूमन लोगों को डर ये होता है कि ये मामला भी ऐसे ही निकल जाएगा, शायद इंसाफ नहीं मिलेगा लोगों को और मसला सॉल्व नहीं होगा, और मुस्तकबिल में ऐसे वाकया शायद होना बंद ना हो, ऐसी कोई पॉलिसी नजर नहीं आती। तो उसका रिएक्शन ये आता है कि अगरचे एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाए जिसमें लोगों को सख्त सजाएं दी जाएं, सख्त से सख्त सजाएं दी जाएं, तो शायद वो एक इबरत का निशाना बनेगी बाकी लोगों के करने के लिए, और उससे जराइम की जो है कमी होगी माशरे में। मुझे लगता है जहां तक मैंने देखा है आपका इस मामले में कुछ दूसरा नजरिया है कि सख्त सजाएं शायद इस मामले में काम नहीं करती। आज उस पर थोड़ा रोशनी डालेंगे आप?
सज़ा का जुर्म को रोकने में बड़ा थोड़ा किरदार होता है, वो सख्त हो या नरम हो, दोनों सूरतों में उसका किरदार बुनियादी नहीं होता। सोसाइटी का माशी नज़म कैसा है, आप नौजवानों को क्या एक्टिविटीज़ दे रहे हैं, माहौल की क्या नौईयत है, आपके तालीमी इदारे कैसे काम कर रहे हैं, यानी इसमें दसियों चीज़ें हैं जिनका मुताला करने की ज़रूरत होती है। हमारी सोसाइटी में इसकी कभी रवायत ही नहीं डाली जा सकी। यानी हर जगह पर, पुलिस में भी अगर लोग बैठे हुए हैं, फौज में भी अगर लोग बैठे हुए हैं, तो वो इसका मुताला करें कि सोसाइटी में जुर्म क्यों पैदा होता है। जाहिर है कि ये हर सोसाइटी के लिए मुख्तलिफ अवामिल से पैदा होता है। हमारे माशरे में अभी भी 60-70% लोग जागीरदाराना निज़ाम में रहते हैं। उनको जो सूरत हाल अपने देहात, गांव, गोठ में पेश आती है, उसका एनालिसिस कभी हमने नहीं किया, उसका तजिया करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ सियासी अमल जिस तरीके से अगवा होता है, उसके क्या असरात सोसाइटी पर होते हैं, इसका भी जायज़ा लेने की ज़रूरत है। माशी पॉलिसियाँ किस तरह से असरअंदाज होती हैं और कैसी फ्रस्ट्रेशन नौजवानों में पैदा हो जाती है, इस पर भी हमने कभी काम नहीं किया। तालीम के निज़ाम ने जो तफरीक पैदा कर रखी हुई है, वो कैसे माशरे के अंदर कहीं एहसास बरतरी और कहीं कहतरी पैदा करती है, उसका भी जायज़ा लेने की ज़रूरत है। तो ये बहुत से इकदामात हैं जो करने के बाद अगर किसी माशरे में जुर्म का इर्तकाब हो, तो फिर इबरत बनाने की भी ज़रूरत होती है। वो इबरत बनाने की जरूरत, अगर महज इबरत बनाने की जरूरत बना ली जाए तो उससे कोई खास फायदा नहीं होता, उस वक्त सख्त सजा देनी चाहिए। तो पहले मरहले में ये इकदाम जरूरी हैं।
जी थैंक यू हमजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने हमें वक्त दिया।